तृतीया का दहा आकाश नित है, उसकति उत्पत्ति के सुगंध ये भूत का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उसकी उत्पत्ति के सुगंध में श्रुति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। छंदोग में भी जगत की उत्पत्ति में तेज जल अनादि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तेज जल अग्नि आदि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, परंतु उसमें आकाश की उत्पत्ति नहीं कही है। इससे सिद्ध होता है कि आकाश नित है। तैत्तिरीय उपनिषद के इस कथन के अनुसार ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होना कहा गया है। छंदोग में न होने पर भी इस श्रुति में होने से आकाश को नित मानना उचित नहीं है। अन्य श्रुतियों में आकाश की उत्पत्ति न कहने से और आकाश के अवैध रहत होने में भी आकाश नित है उसकी उत्पत्ति बताने वाली इस श्रुति की श्रुति को गौण समझना ही उचित है। आकाश के नित होने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। वायु और आकाश दोनों अमर हैं और तैत्रियक में ही आकाश शरीरम ब्रह्म कहकर आकाश को ब्रह्म का देह होना बताया है। इस प्रकार आकाश का उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता। तैत्तिरीय उपनिषद में तपसा ब्रह्म बे जिज्ञासब बे जिज्ञासब तपा ब्रह्म अर्थात तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है कहकर एक शब्द से ही दो अर्थ होने की शंका उपस्थित कर दी है। ब्रह्म और तप ब्रह्म है ऐसा कहने से ब्रह्म को तप का विशेषण बनाकर कहकर ब्रह्म को गौण अर्थ में प्रयुक्त किया है, तो इसी प्रकार किसी विद्वान के द्वारा गौण अर्थों में ही आकाश का उत्पन्न होना भी कहा जा सकता है। ब्रह्म से आकाश को कहना मानने से ही प्रतिज्ञा की हानि से बहुत सकते हैं। शब्दे पया शब्दों के द्वारा भी यह सिद्ध है। ब्रह्म को आकाश से पहनना मानना श्रुति सम्मत भी है। ब्रह्म से पहना आकाश आदि को मानने तो प्रतिज्ञा की हानि संभव है। ब्रह्म सबका उपादान है और उसी के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। सृष्टि के पूर्व एकमात्र ब्रह्म होने के कारण संपूर्ण वस्तुओं को ब्रह्मात्मक रूप कहने से आकाश की उत्पत्ति सभी कार्य की कारण ले तो आकाश उस ब्रह्म का ही कार्य होना सिद्ध होता है और इस प्रकार से प्रतिज्ञा की हानि भी नहीं होती। एतदात्म भयमिदं सर्वं से सभी कार्य ब्रह्म के होना सिद्ध है। जैसे लोग में किसी के पुत्रों का निर्देश करके कह देते हैं कि यह अमुक के पुत्र है और एक की उत्पत्ति बता देने से ही सब की उत्पत्ति उसी प्रकार हुई होगी। जो समझ लिया जाता है वैसे ही सब कार्य मात्र को ब्रह्म का कार्य कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति कह दी गई, उन्हीं के समान न कहे हुए की उत्पत्ति भी समझनी चाहिए। तेज आदि को सृष्टि के समान ही आकाश और वायु का ब्रह्म से उत्पन्न होना और उसका अमर होना कहा गया है। जिन परमाणुओं और युक्तियों से आकाश का उत्पन्न होना बताया गया है, उन्हीं परमाणुओं से वायु का उत्पन्न होना भी सिद्ध हो गया। उसके संबंध में पृथक से कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ब्रह्म ही अजन्मा और नित्य है, वही जगत का परम कारण है। उसके सिवाय और कोई भी ऐसा नहीं है जो जन्म मरण के चक्कर से बचा हो। यही बात श्रुतियों के परमाणुओं और युक्तियों से भी सिद्ध होती है। तेज वायु के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वायु अग्नि इस तैतरीय शक्ति से भी वायु से तेज की उत्पत्ति सिद्ध होती है। अन्य शास्त्रों में भी इसी प्रकार माना गया है। ज्योति परमाणु से तेज के द्वारा जल का उत्पन्न होना सिद्ध होता है। अग्नि रापा के अनुसार अग्नि से जल का उत्पन्न होना कहा है। इस प्रकार जल तेज से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से कही गई है। जहाँ शंका होगी कि ता आप एक क्षंत बनने श्याम प्रजाजेज ही थी ता अन्नम सृजंत अर्थात उस आप तत्व से इच्छा को कि हम बहुत हो प्रजा उत्पन्न करें, तब उन्होंने अन्न की रचना की। ऐसे अन्न का उत्पन्न होना कहा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ कही, इसका समाधान यह है कि अन्न को पृथ्वी मानने के लिए यहाँ तीन कारण प्रस्तुत करते हैं, अधकार, दूसरा रूप और तीसरा शब्दांतर। अधकार का अर्थ है प्रकरण, यह पंचभूतों का प्रकरण है और पृथ्वी महाभूतों में है, अन्न नहीं है। और रूप पंचभूतों का प्रकरण है और पृथ्वी महाभूतों में अन्न नहीं है। रूप से पृथ्वी का कालापन के लिए हुए बताया है, परंतु अन्न कालापन लिए नहीं होता। अब शब्दांतर पर कहते हैं, औषधि और औषधि से अन्न होना कहा है। जल से सीधे अन्न पैदा होने की बात नहीं कही है। इन सब से सिद्ध है कि जहां अन्न शब्द से पृथ्वी ही कही गई है। इस प्रकरण में उत्पत्ति क्रम की बात कही गई है। संपूर्ण विश्व को रचना ब्रह्म के द्वारा संभव है। चिंतन रूप कर्म भी जड़ के द्वारा होना संभव नहीं, चेतन ब्रह्म द्वारा ही संभव है। उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से कोई भी तत्व कारण नहीं बताया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सब का उत्पादक एकमात्र ब्रह्म ही है। जगत की रचना का जो क्रम कहा गया है, उसके विपरीत क्रम प्रलय काल में होता है। सृष्टि काल में ब्रह्म से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि की उत्पत्ति होती है और प्रलय में यह सभी तत्व उसके ठीक विपरीत क्रम से अपने अपने कारणों में विलीन होते हैं। युक्ति और प्रमाण दोनों प्रकार से ऐसा ही होना चाहिए। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई के अनुसार ब्रह्म से प्राण और मन सहित इंद्रियों की उत्पत्ति पांच भूतों से पहले कही है। इस प्रकार प्राण और मन सहित इंद्रियों की उत्पत्ति माननी चाहिए, परंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वर्णन में किसी प्राण विशेष को नहीं कहा गया है। ये बात उक्त श्रुति के पूरे प्रकरण को देखने से सिद्ध होता है कि प्राण और मन सहित इंद्रियों की उत्पत्ति भी ब्रह्म से होती है। श्रुतियों ने सृष्टि रचना का वर्णन कल्प भेद से ही विभिन्न क्रम से किया है, इसलिए भी कोई एक क्रम विशेष इस पक्ष में मन नहीं हो सकता। जो जीवात्मा चार और अचार शरीरों के आश्रय में है, वे ब्रह्म के अंश रूप जन्म मरण से रहत अविनाशी है, परंतु जय अपने परंपरागत कर्मों से स्थावर और जंगम रूप देह धारण करते हैं। श्रुतियों में उनके देह धारण और मरण को लेकर गौण रूप से उत्पत्ति और विनाश कहा है। सृष्टि के आदि में जीवों का प्रकट होना ही उत्पन्न होना है और परले में लीन होना ही विनाश होना। जैसे आत्मा उम्र है, वह कभी मरता नहीं, जिस शरीर को प्राप्त होता है उसी के रूप में पावत हो जाता है। श्रुतियों में कहीं भी जीवात्मा के उत्पन्न होने या मरने की बात नहीं मिलती। जय जीवात्मा शरीर को प्राप्त होने से जन्म लेता और शरीर से निकलने के कारण मर जाता कहा जाता है। इस प्रकार जीवात्मा स्वयं नहीं मरता, इससे सब जीवात्मा का अविनाशी होना सिद्ध है। वह जीवात्मा जन्म मरण से रहित होने के कारण ही चेतन और ज्ञाता भी है। परंपरागत संस्कारों के कारण जब वह जन्म लेता है, तब बाल रूप में सतनपान आदि में स्वयं प्रवृत्त हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि उसे पूर्व जन्म का व्यास रहता है, और इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा अविनाशी होने के कारण ज्ञाता भी है। शरीर त्याग करना तो प्रत्यक्ष देखा ही जाता है। शरीर त्याग के बाद अन्न देह में जाना और फिर उसे छोड़ना श्रुतियों द्वारा कहा गया है। इस लोक का त्याग कर सत्कर्म वश ऊर्ध लोकों में जाना या मोक्ष होना अथवा उन लोकों से लौटने का भी वर्णन मिलता है, अर्थात स्वर्ग लोक में ऐश्वर्य को कर पुनः मर्त लोक में लौटना कहा है। इससे जीवात्मा का विनाशी होना सिद्ध होता है। आवागमन रूप दोनों क्रियाएं अपने स्वरूप से ही सिद्ध होती है। जो परलोक गमन करेगा वही लौटेगा। वहां अन्य रूप के द्वारा क्रिया की सिद्धि नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि देह नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। देह के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। श्रुति वाक है, प्राणों में जो जय विज्ञान में आत्मा है, वही जय अजन्मा महान आत्मा है। इस वर्णन से यदि यह कहे कि जीव आत्मा अणु नहीं व्यापक है, तो यह कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जय श्रुति ब्रह्म प्रकरण होने से आत्मा शब्द को जहां जीव आत्मा वाची नहीं मान सकते। जीव आत्मा को स्वैभिषक शब्द से अनुकथन किया गया है। कह कर अणु परमाणु वाले आत्मा को चित से जानने योग कहा है। बाल की अगर भाग के सौ भाग कर उसके भाग के भी सौ भाग करके उस एक भाग का परिमाण जीवात्मा को कहा है, इससे भी जीवात्मा का अणु होना सिद्ध है। जैसे एक स्थान पर रखा हुआ चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह व्याप्त हो जाता है, वैसे ही देह के एक स्थान हृदय में स्थित हुआ आत्मा भी अपने विज्ञान रूपी गुण के कारण संपूर्ण देह में व्याप्त हो जाता है और देह के दुख सुख रूपी कर्म भोगों की अनुपूर्ति करता है। यदि ऐसा कहा जाए कि चंदन की स्थिति में और आत्मा स्थिति में अंतर है, क्योंकि चंदन तो प्रत्यक्ष एक स्थान में है परंतु आत्मा का एक स्थान में होना प्रत्यक्ष नहीं है, तो ऐसा कहना इसलिए ठीक नहीं कि आत्मा का हृदय में रहना श्रुति ने कहा है। हृदयेश आत्मा अर्थात यह आत्मा हृदय में है, ऐसा मानने पर उसका एक देह में स्थित रहना सिद्ध हो जाता है। जैसे लोक में एक स्थानीय मणि का प्रकाश फैलता है, वैसे ही जीवात्मा का गुण चेतनत्व समस्त देह में फैल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा देह से भिन्न विज्ञान स्वरूप और अविनाशी है। जैसे पुरुष का गंध गुण पुष्प से दूर भी प्रतीत होता है, वैसे ही जीवात्मा का चेतन गुण हृदय से दूर भी अर्थात देह के सब अवयवों में व्याप्त होता है। इस प्रकार गुण का गुण से दूर होना देखा जाता है। श्रुति भी इस बात का अनुमोदन करती है कि गुणी का गुण उससे दूर तक व्याप्त रहता है और नखाग्रों में भी माना गया है। इस प्रकार भी आत्मा का अणु परमाण वाला होना सिद्ध होता है। जीव का कर्मभूत ज्ञान नित है, मन आत्मा से भिन्न है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मन और आत्मा की संगति से ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि मन और आत्मा दोनों ही अवयवहीन है और दोनों अवयवहीन वस्तुओं का संयोग संभव नहीं है। ब्रह्म से विमुख रहने के कारण यह ज्ञान छुपा रहता है और ब्रह्म का चिंतन करने से ज्ञान का पर्दा उठ जाता है, तब फिर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कुआं खोदने से जल उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु जो जल पहले से मिट्टी आदि से टका रहता है वह प्रकट हो जाता है। जीव का ज्ञान भी उसी प्रकार नित होने से प्रकट मात्र होता है, उत्पन्न नहीं होता। इसे सिद्ध होता है कि ज्ञाता अर्थात जीवात्मा का ज्ञान गुणों से भिन्न है। जैसे परम ब्रह्म को प्राग कहा गया है, वैसे ही जीवात्मा के गुणों की प्रमुखता से उसे विज्ञान में कहते हैं। प्राग शब्द से जाना जीवात्मा का ही बोध समझना चाहिए, क्योंकि उस गुण की प्रमुखता वाले शब्द की पंक्ति ज्ञाता का ज्ञान रूप में कथन है। ब्रह्म जैसे ज्ञान की विशेषता से युक्त होने पर भी ज्ञान रूप में अभिहित होता है, वैसे ही जीव भी होता है। इस प्रकार ज्ञाता जीवात्मा ही ज्ञान स्वरूप में कहा गया है। आत्मा जब देह में रहता है तब तो उसके साथ संबंध रहता ही है, परंतु देह से निकलने पर भी उसका संबंध देह से रहना माना गया है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय भी वह सूक्ष्म शरीर से संबंध रखता है, परलोक में भी उसका शरीर सुगंध से युक्त रहना कहा गया है परले काल में और सुगपन में भी वह देश गंध को नहीं त्यागता। इस प्रकार देव के साथ आत्मा का सुगंध कहा जाने से कोई दोष नहीं, यह बात श्रुति वाक्यों द्वारा भी प्रमाणित है। यद्यपि परले काल में सभी तत्व अपने कारण का रूप ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, परंतु वे सब उसी कारण की अचिंत शक्ति के रूप में वहां विद्यमान रहते हैं। जैसे पुष्प का पुंस्तक उसके बालकपन में ही विद्यमान रहता है, परंतु वह प्रकट नहीं होता और तरण अवस्था में प्राप्त होने पर शक्ति संयोग से प्रकट हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म में विलीन हुए सभी तत्व एवं जीव रचना काल में प्रकट हो जाते हैं। जय प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कभी जीव आत्मा किसी विषय का अनुभव करता है, कभी नहीं करता, कभी किसी दृश्य को देखता है, कभी नहीं देखता। यदि उसका ध्यान किसी और विषय में मग्न हो तो खुली आंखों के समान से कोई दृश्य निकले या उपस्थित हो उसे वह नहीं देख पाता। यदि यह मान ले कि जीवात्मा अंतःकरण के संबंध से विषयों का अनुभव नहीं करता तो उपरोक्त प्रत्यक्ष बात के संबंध में विषयों का अनुभव नहीं करता तो उपरोक्त प्रत्यक्ष बात मिथ्या माननी होगी। जीवात्मा को अंतःकरण के संबंध बिना स्वयं ही विषयों का अनुभव करने वाला मानने तो जीवात्मा के नित्य होने के कारण अनुभूत विषय भी नित्य हो जाएंगे और तब आत्मा को ग्राहक शक्ति और विषय की ग्राह्य शक्ति को प्रतिबंधित करना होगा। ऐसा होने पर ग्राह्य शक्ति के नियंत्रित रहने पर विषय की प्राप्ति नहीं होगी और नियंत्रण न रहने पर प्राप्ति होगी। मन से देखता मन से सुनता है, श्रुति से भी जीव का अंतःकरण के संबंध को मनना सिद्ध होता है। जीवात्मा शास्त्र के उपदेशों को सार्थक करता है, अर्थात उसके आदेश अनुसार यज्ञादि कर्म करता है। यदि ऐसा कहे जीव का कर्तव्य निषेध किया है तो इससे जीव करता नहीं तो यह शंका व्यर्थ है, क्योंकि गुण को करने वाला नहीं मान सकते। मोक्ष की कामना वाला पुरुष यज्ञ करेगा, इसे पुरुष ही करता है, गुण करता नहीं। ये अमुक कार्य कर रहा है, वह चल रहा है, वह बैठा है, वह क्रीड़ा कर रहा है इत्यादि वाक्यों से जहां जीवात्मा ही करता सिद्ध होता है। जीवात्मा इंद्रियों को लेकर स्वप्न आदि अवस्था में विहार करता है और फिर उनके सहित ही शरीर में लौट आता है। इत्यादि के अनुसार जीवात्मा का प्राण आदि के सहित गमन करना कहा है। इस प्रकार जीवात्मा गमन करता है तो वह करता ही कहा जाएगा। क्रियाम क्रिया में व्यपदेशात जीव का कर्ता होना श्रुति ने कहा है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपीचा, अर्थात विज्ञान में जीवात्मा जग का विस्तार कर उसके लिए कर्मों को करता है कहकर जीवात्मा का कर्तापन सिद्ध किया है। श्रुति की संगति नहीं बैठेगी। सिद्ध किया है यदि विज्ञान शब्द से जीव न मान कर बुद्धि माने तो उससे चुरती की संगति नहीं बैठेगी, क्योंकि जहां जीवात्मा को ही विज्ञान कहा गया है, यदि वहां विज्ञान शब्द को बुद्धिवाची प्रयुक्त किया जाता तो करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके विज्ञानेन शब्द कहा जाता। जीवात्मा को सुख दुख की प्राप्ति होने में किसी प्रकार का नियम नहीं, क्योंकि यह देखा जाता है कि बहुतों को अनुकूल भोग ही प्राप्त होते रहते हैं और बहुतों को भोग प्राप्ति में प्रतिकूलता रहती है। किसी को कभी सुख और दुख का चक्कर लगा ही रहता है और ऐसा कोई नियम नहीं कि जीवात्मा को निश्चित भोग प्राप्त होते रहें। इसी प्रकार कर्म करने में भी कोई नियम नहीं, वह शुभ अशुभ कैसा भी कर्म करे उसके करने में वह स्वतंत्र है, इससे भी जीवात्मा का कर्ता होना सिद्ध होता है। जीवात्मा का कर्तापन परंपरागत संस्कारों और देह इंद्रियाद के संबंध में है, स्वरूप में नहीं है, इसीलिए उसके निरंतर अपने हित का ही कर्म कर सकना संभव नहीं है। किसी कर्म के करने से साधनों की आवश्यकता होती है और यह संभव नहीं कि मन चाहे साधन चाहे जब उपलब्ध हो जाए, इसलिए विपरीत साधन उपलब्ध होने पर हितकर कार्यों का होना भी संभव होता है। इसलिए शक्ति के विपरीत कर्म करने में भी इच्छित फल प्राप्ति संभव नहीं है। मनुष्य निमग्नता की अवस्था में कर्मों के संबंध में मनन पूर्वक विचार कर सकता है, इसलिए किसी गंभीर विषय पर विचार करने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर समस्या का समाधान सोचते हैं। बिना विचारे जो कार्य किए जाते हैं वे प्रायः अहितकर ही सिद्ध होते हैं। जैसे साधन स्पन्न शिल्पी औजारों के द्वारा कभी अपने कार्य को करता है कभी कार्य को छोड़ देता है, वैसे ही जीवात्मा भी जब अपनी इंद्रिय आदि साधनों से युक्त होता है तब उनके द्वारा कार्य करता है। उस समय वह कर्ता होता है, जब वह अपने कर्म को छोड़ देता है तब उसका कर्तापन नहीं रहता। इस प्रकार जीवात्मा का कर्ता होना सिद्ध होता है। यहाँ एक शंका होती है, जीव का कर्ता होना स्वयं सिद्ध है, जैसे पुरुष ने मोक्ष कामना से यज्ञ किया तो इससे पुरुष स्वयं होना ब्रह्म से ही है, क्योंकि ब्रह्म ही जीवों के हृदय में प्रविष्ट होकर उन्हें कर्म में लगाते हैं। अतः प्रविष्टा शास्ता जनाना इत्यादि इस प्रकार के अनेक प्रमाण श्रुतियों में मिलते हैं। परमात्मा जीव के लिए जो साधना और शक्ति आदि देता है वह जीव के पूर्व संस्कार कर्मों के अनुसार ही देता है। मनुष्य में विवेक अथवा कुबुद्धि का आविर्भाव भी परमात्मा की प्रेरणा से ही होता है और वह प्रेरणा भी उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। शास्त्र में जिन अच्छे कर्मों के करने की विधि कही गई है वे कर्म अथवा जिन असंगत कर्मों का निषेध किया गया है, ऐसे कर्म भी तभी सिद्ध हो सकते हैं जबकि उन कर्मों को करने के लिए समुचित साधन उपलब्ध हों। यदि साधन आदि के अभाव में कर्म व्यर्थ हो जाते हैं तो उनकी सिद्धि संभव नहीं है। इस प्रकार कर्मों की सिद्धि परमात्मा की प्रेरणा से होना ही सिद्ध होता है। श्रुतियों में जीवात्मा और परमात्मा को पृथक पृथक कहा गया है, क्योंकि जीवात्मा अल्पाग और ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव उसके निजम से बंधा है और वह जीव का नियामक है, परंतु ब्रह्म और जीवात्मा का तत्व प्रतिपादित होने से जीव ईश्वर का ही अंश है। जीव के माता पिता बंधु निवास चरण सुहृद गति आदि सब कुछ एक नारायण ही बताए हैं। इससे जीव का ब्रह्म संबंध विभु रूप स्पष्ट सिद्ध हो रहा है। एक शाखा वाले विद्वान अपने लिए दास सेवक आदि कहकर ब्रह्म की उपासना करते हैं। इससे जीव ब्रह्म संबंध से जीव के प्रति दास भाव और ब्रह्म का विभु होना सिद्ध होता है। मंत्र वर्णन में जीव को ब्रह्म का अंश कहा गया है। पादवस्य सर्वभूतानि से ब्रह्म के एक पाद में सब भूतों के होने की बात कही है। से पाद शब्द से अंश का ही बोध होता है। स्मृति में भी जीव का ईश्वर अंश होना स्पष्ट किया है। जीव लोक को जीव होता सनातना अर्थात जीव ही लोक में जितने भी जीव आदि सनातन है वे सब मेरे ही अंश हैं। इस प्रकार जहां सनातन शब्द जीव की विभुता प्रदर्शित नहीं करता है, किंतु जीव का ब्रह्म अंश होना बताता है। स्मृति में जीव का स्वरूप बताते हुए जीव को आत्म आश्रय ज्ञान आश्रय ज्ञान गुण चेतन प्रकृति से परे जन्म रहत एक रूप और शरीर की विशेषता वाला तथा दास पूतो हरे रेव अर्थात श्री हरि का दास पूत कहा है। इसे जीव का ब्रह्म अंश होना ही सिद्ध होता है। सूर्य आदि प्रकाश अपने अंश के दोषों से स्वत नहीं है और वहां के वातावरण से प्रभावित भी सी लगती है, परंतु सूर्य पर उस वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार ब्रह्म भी अपने अंश रूप जीवों के कर्म शेष दोषों से प्रभावित नहीं होता। जैसे सब लोगों के चक्षु स्वरूप सूर्य चक्षु से होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा एकमात्र ब्रह्म लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता। स्मृतियों में भी जीवात्मा को ब्रह्म का अंश बताया है। स्मृति वचन में इते चांस कला हंसा कृष्णस्तु भगवान जैसा वंश कला रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है कहकर अर्थात जैसा वंश कला रूप अर्थात जैसा वंश कला रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है कहकर जीव को ब्रह्म का अंश बताया है। शरीरों के विभिन्न रूप हैं, उनके साथ जीवात्माओं का संबंध रहता है। उनके शरीर की स्थिति के अनुसार ही कर्म की अनुज्ञा अथवा निषेध होता है। जैसे बंदर के हाथ में नारियल दीजिए तो बैल उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए यहां बंदर को तो बैल बंदर को उसे ना देने से निषेधात्मक भाव हुआ और मनुष्य नारियल का उपयोग जानता है इसलिए उसे देना। अनुज्ञा हुई इसी प्रकार सब स्थान पर सम लेना चाहिए। एक आत्मा एक शरीर में ही रहती है, इसलिए उसके ही सुख दुख आदि भोगों को भोगती है। या दूसरे शरीर के व्याप्त नहीं होती, इसलिए अन्य शरीरों का भोग भी उसे व्याप्त नहीं होता। जैसे आकाश को प्राप्त हुए शब्द विभक्त रहते हैं, उसका परस्पर मिश्रण नहीं होता और उन्हें एक ही काल में विभिन्न स्थानों में सुना जाता है, वैसे ही शरीर संबंध से आत्माओं के प्रताप बनाने के कारण उनके कर्मों अथवा भोगों का मिश्रण नहीं होता और वे प्रताप प्रताप ही अपने कर्म फल रूप को भोगते हैं। अपार जो हेतु जीवात्मा और उसके कर्मों को पृथक पृथक दिखाने के लिए और जीव को ब्रह्म का अंश बताने के लिए दिए हैं, वे सब शास्त्र सम्मत और युक्ति आदि के द्वारा भी प्रमाणित हैं। इसके विपरीत जो मन्यताएं मिलती हैं, वह प्रमाण रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे अपास मात्र ही है। पूर्व कर्मों के भोग का प्रत्यक्ष निज न होने से जीवों के कर्मों की समानता स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि सब जीव समान नहीं है, विभिन्न योनियों में होने से उनके कर्म भी विभिन्न होते हैं। जो जीव एक स्वरूप के अर्थात एक ही योनि के होने के समान रूप वाले हैं, वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। यदि उन्हें स्वतंत्र मान ले तो उनके अदृष्ट कर्मों का फल को कौन कराएगा? यदि ये कहें कि स्वयं ही फल करा लेंगे तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ कर्म अपने फल को की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। इससे यही सिद्ध होता है कि सब जीवात्मों के कर्म फल के भोगों की व्यवस्था ब्रह्म ही करता है और सब जीव उसी के अंशभूत हैं। ईश्वर और जीवों का अंश अंशी भाव माना गया है। यदि ऐसा न माने तो कर्म फल भोग की नियमित अवस्था न हो सकने के कारण जीवात्मा के संबंध आदि के विभाग का निर्मत होना भी संभव न होगा और ब्रह्म के संकल्प आदि से भी उनकी भिन्नता सिद्ध नहीं होगी। यदि कहो कि उपनिषदों में देश भेद होने से जीवों का विभाग संभव है और उससे कर्म एवं संकल्प आदि का भी नियमन हो जाएगा, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी होने से सब उपाधियों में व्यापत है, इसलिए उपाधियों के देश भेद से ब्रह्म में देश भेद नहीं हो सकता। इस प्रकार पारब्रह्म और जीवात्मा का भाव उपाधि निर्मित नहीं है। तृतीया पादा समाप्त। चतुर्था पादा। तथा प्राण। जैसे आकाश आदि पंचभूतों की ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, वैसे ही प्राण और सब इंद्रियों उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पंचभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति में कोई भेद नहीं है। मना सर्वेन्द्रियाणि चेतस्यमात् जायन्ता, अर्थात जिस मन और सर्व इंद्रियों इसी से उत्पन्न होते हैं, जो श्रुति वाक भी इस संबंध में प्रमाण है। प्राण को जल से उत्पन्न बताने वाली श्रुति असंभव कथन के कारण गौण है। इसे पक्षण किए हुए तेज के सूक्ष्म अंश के एकत्र होने से वाणी बनना कह गया कहा गया है। इसी प्रकार पक्षत अन्न से मन की उत्पत्ति और पान किए हुए जल से प्राणों की उत्पत्ति कही है, परंतु प्राणों के बिना जल कैसे पान किया जाएगा। इस प्रकार को असंभव बात कहने से उस श्रुति को गौण मान लेना ही ठीक है। श्रुतियों ने इंद्रियों का पंच तत्वों से भी पहले उत्पन्न होना कहा है, इससे भी इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि की उत्पत्ति से पहले हुई है, ये सिद्ध होता है। उन तत्व रूप तीन देवताओं में जीव सहित प्रविष्ट होकर ब्रह्म के नाम रूप वाले विश्व को रचा। इस प्रकार ब्रह्म के प्रवेश होने पर जगत की उत्पत्ति बताने से इंद्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा ही मानी जाएगी, तेज आदि तत्वों से नहीं, इसलिए वैश्वर्ति गुण माननी चाहिए। सात इंद्रियों कही गई है, सात प्राण उत्पन्न होते हैं, उससे सप्तऋषि सम्मत सपत होम और या सात लोग होते हैं जैसे समस्त प्राण विचरण करते हैं। ज्ञानानि पद इंद्रियों का विशेषण है, ऐसे पांच ज्ञान इंद्रियां और मन तथा बुद्धि, इस प्रकार सात इंद्रियों का होना ही सिद्ध है। हाथ पांव आदि अन्य इंद्रियां भी तो शरीर में है, इस स्थिति में यह कहना कि इंद्रियां साथ ही उचित नहीं है। बृहदारण्यक में दशम पुरुष में समस्त प्राण और ग्यारहवीं आत्मा कहकर ग्यारह इंद्रियों का होना मानना है, इससे आत्मिक एकादश से पांच ज्ञान इंद्रियां श्रोत्र त्वक चक्षु रसन और प्राण, पंच कर्म इंद्रियां वाक पाणी पाद पाजु और अपस्त और समस्त ज्ञान के लिए एक अंतर इंद्रिय अर्थात मन का बोध होता है। इस प्रकार इंद्रियां सात नहीं किंतु ग्यारह हैं, जैसे सिद्ध हुआ। सभी इंद्रियों का अनुरूप होना सिद्ध होता है, जैसे जीव अनुरूप होकर भी अपने फलने वाले अणु से आम से मस्तक तक व्याप्त हो जाता है, वैसे ही प्राण के संबंध में समझना चाहिए। मुख प्राण की उत्पत्ति भी आकाश आदि की पंक्ति ही होती है, परंतु मुख प्राण को इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। श्रुतियों में प्राण को पृथक बताए जाने से प्राण शब्द से वायु अथवा उसकी स्पंदन क्रिया का बोध नहीं होता। प्राण का पृथक अस्तित्व सिद्ध होता है। प्राण भी अन्य नेत्रादि इंद्रियों की तरह जीव का एक उपकरण है, साधन है। छंदोग में अयम मुखा प्राण से प्राण और इंद्रियों का संवाद कथन है, इस उसमें प्राण की श्रेष्ठता एवं सब इंद्रियों का उसके अनुशासन में रहना सिद्ध हुआ। प्रजापति से इंद्रियों ने अपने श्रेष्ठता का प्रश्न किया तो प्रजापति ने कहा, तुम में से जिसके निकलने पर वे मृतक हो जाए वही श्रेष्ठ है। इस पर वाणी नेत्र श्रोत्र आदि कर्मशा निकले तब भी शरीर का कार्य चलता रहा, तब अंत में मुख प्राण ने बाहर निकलने की चेष्टा की, उस समय सभी इंद्रियां अपने अपने स्थान में विचलित हो गई और उन्होंने प्राण का श्रेष्ठ होना स्वीकार कर लिया। शरीर के सब कार्य इंद्रियां करती हैं और उन इंद्रियों का धारण करने वाला प्राण ही है। इस प्रकार जीव के लिए प्राण का उपकार सर्वाधिक है। प्राण जब शरीर का त्याग कर देता है तब वह छूने योग्य भी नहीं रहता। जसमन उत्क्रांते इदं शरीरं, पापिष्ट तर्क मिल दृष्टि, अर्थात जिसके देह से निकलने पर यह शरीर पापी के समान दिखाई देता है, इस प्रकार प्राण का महत्व सिद्ध होता है। जैसे पांच ज्ञान इंद्रियों के रूप में मन की पांच वृत्तियां कही गई है, जैसे ही प्राण को भी श्रुतियों ने पांच वृत्ति वाला ही कहा है। प्राण अपान समान उदान और ज्ञान, इस प्रकार प्राण की पांच वृत्तियां हैं। एक ही प्राण हृदय आदि सब स्थानों में पांच प्रकार से विद्यमान होकर कार्य करता है। योग शास्त्र में मन की पांच वृत्तियों का लेख है। इसी दृष्टांत से प्राण की पांच वृत्तियों का वर्णन किया गया है। प्राण स्थूल है अथवा सूक्ष्म, इस शंका के उत्तर में प्राण को सूक्ष्म कहा गया है। सब प्राणियों की स्थिति प्राण के अधीन होने से ही उसका विभुत्व देखने में आता है। मरण काल में जब प्राण शरीर का त्याग कर जाता है तब वह दिखाई नहीं देता, इससे भी प्राण का अणु होना सिद्ध है। ज्योति आदि तत्वों का अधिष्ठाता ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म ने बहुत होने की इच्छा से तेज की रचना की और तेज ने इच्छा की इत्यादि छंदोग श्रुति के अनुसार ब्रह्म ही तेज का अधिष्ठाता हुआ। बृहदारण्यक के अनुसार भी जो अग्नि वायु आदि में स्थित है, जिसे यह नहीं जानते, ब्रह्म का अधिष्ठान होना भी सिद्ध है। प्राणधारी जीव इन सब इंद्रियों का अधिष्ठाता है, वही सब इंद्रियों को अपने अपने भोग के लिए प्रेरित करता है। तीन तत्वों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्म ने विचार किया कि इस जीवात्मा से वे तीन देवताओं में प्रकट होकर अनेक नाम रूप प्रकट करूं। इस प्रकार देवताओं को उनके परिवर्तन के लिए जीवों के भोग संबंध में ब्रह्म के संकल्प से इंद्रियों का अधिष्ठाता होना सिद्ध होता है। श्रुतियों ने जीव को विनाशी कहा है। सृष्टि रचना के समय शरीरों की उत्पत्ति में गौण रूप से उसका उत्पन्न होना कहा है, वास्तव में वह अपास मात्र ही है, क्योंकि पंचभूतों की उत्पत्ति से पूर्ण या पूर्व या पश्चात भी उसकी उत्पत्ति का वर्णन नहीं किया गया है। शरीर में जीवात्मा सद ब्रह्म की प्रविष्ट होने के वर्णन से भी यही सिद्ध हुआ होता है। इंद्रियों को मुख प्राण से भिन्न भी कहा गया है। मुंडक आदि श्रुतियों ने प्राण को इंद्रिय नहीं कहा है। इस प्रकार इंद्रियां और मन प्राण से भिन्न है। इंद्रियाणि दशकच अथवा श्रुतियों में प्राण को गौण रूप से इंद्रियों में कह दिया है। श्रुतियों ने इंद्रियों के वर्णन में उनका प्राण से भेद कहा है। प्राणो मना सर्व इंद्रियाणि चै से प्राण की सब इंद्रियों से भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। इससे सिद्ध है सब इंद्रियां प्राण से भिन्न ही है। प्राण पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं होता। सुषुप्ति में इंद्रियां और अंतःकरण सभी का लय हो जाता है और सब निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु उस समय केवल प्राण जागृत रहता है। प्राण देह और इंद्रियों का धारण करने वाला होने से भी इंद्रियों और प्राण के लक्षण में मिलता है। नाम रूपादि से स्पन्न विश्व की रचना का काम ब्रह्म का ही है। छंदोग के अनुसार इस देवता ने देखा कि मैं इन तीन देवताओं तेज जल पृथ्वी में इस जीवात्मा के सहित प्रवेश करके नाम रूप को प्रकट करूं। इससे सिद्ध हुआ कि यह सब कार्य ब्रह्म के ही हैं। पृथ्वी के तीन कार्य कहे हैं, भोजन के बाद स्थूल भाग पुरीष, मध भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है। इसी प्रकार इत्यादि से यही सिद्ध होता है इसमें तेज का स्थूल भाग अस्थि, मध भाग मज्जा और सूक्ष्म भाग भाव कहा है। पानी का स्थूल भाग मूत्र, मध भाग रक्त और सूक्ष्म भाग प्राण होता है। ऊपर पृथ्वी आदि तत्वों की विशेषता होने से ही मांस मन पुरीष को पौम कहा है, वैसे ही उन तत्वों की विशेषता से अस्थि आदि और मूत्र आदि को कहा गया है। जल का सूक्ष्म अंश प्राण को कहने से तात्पर्य है कि जल पीने से प्राण की स्थिति ठीक होती है। इसी प्रकार अन्य तत्वों की विशेषता से विभिन्न वस्तुओं का निर्देश समझना चाहिए, जैसे मन प्राण इंद्रिय आदि भूतों द्वारा उत्पन्न नहीं होते, उन तत्वों के संसर्ग से इस प्रकार का उल्लेख गौण रूप से हुआ है। चतुर्थ पाद संपूर्णम, द्वितीय अध्याय संपूर्णम।